धवला लेक्चर नंबर 2। ओम नमः सिद्धेश, ओम नमः सिद्धेश, ओम नमः सिद्धेश, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वैश्यायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुवमम पत्थसौखमणवच्चम् केवलपहोहनिज्य दुर्नयतिमिरञ्जिनं नमः। आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडा के ऊपर लिखी हुई है। दूसरी बार उसका यहाँ अपना स्वाध्याय चल रहा है और अभी हम यहाँ आए हैं पृष्ठ संख्या 11 पर। 11। देखिए, कल हमने ये बात देखी थी कि जो शास्त्र की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले मंगल किया जाता है, परमेष्ठियों का स्मरण होता है। उसके बाद निमित्त, किसके निमित्त से शास्त्र रचना हुई उसकी बात बताते हैं। उसके पश्चात उसका हेतु क्या है, परिमाण यानी उसका प्रमाण कितना है, वो भी बात बताई जाती है। फिर शास्त्र का नाम और उसका कर्ता, छह बातों की बात लिखने के पश्चात यहाँ शास्त्र की शुरुआत की जाती है। ये षटखंडागम नाम का शास्त्र है, उसकी शुरुआत सूत्र से हुई है। जो हम नमोकार मंत्र बोलते हैं सबसे पहले लिखित रूप से वहाँ पाया जाता है। 8 नंबर के पृष्ठ पर हमने देखा, ये नमोकार मंत्र पढ़ा हमने और उस संबंधी ये चर्चा चल रही थी कि उन्होंने तो केवल मंगल किया है, बाकी ये सभी 6 बातें कहाँ बताई है। तो कहते उसी के द्वारा वो निमित्त हेतु वो सब कैसे घटित होता है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही थी। तो इसमें से ये बात बताई थी, क्योंकि हमने कल क्या पढ़ा उसको फिर लेके फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, कि इसको देशामर्शक सूत्र कहते हैं। जैसे हम कहते ना कि वो ताल नामक वनस्पति का नाम लिया तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है, एक का नाम लिया तो सबके लिए एप्लीकेबल है, इसको कहते हैं देशामर्शक। देश यानी एक देश, उसको बताने वाला, यानी उसका एक का नाम लिया तो सब उसमें एप्लीकेबल होता है, ये उसका अर्थ है। तो यहाँ ये बात बता रहे थे 9 नंबर के पृष्ठ पर, विशेषार्थ की पहली लाइन, जो सूत्र निकाल अधिकृत विषयों के एक देश कथन द्वारा समस्त विषयों की सूचना करे उसे देशामर्शक सूत्र कहते हैं। यानी एक देश कथन से संपूर्ण कथन उसमें गर्भित हो जाता है, ये उसका इस शब्द का यानी वाक्य का अर्थ है। अभी इसी विशेषार्थ के लास्ट 2 लाइन देखो, उसी प्रकार यानी यहाँ बीच में उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि ताल प्रबम पलम्ब कहने से सभी वनस्पतियां उसमें आ जाती है, ऐसा ही उसी प्रकार यह नमस्कारात्मक सूत्र भी, ये जो नमोकार मंत्र है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र रूप रचना है, देशामर्शक होने से मंगल के साथ अधिकृत निमित्त हेतु परिणाम और कर्ता का भी बोधक है, यानी वो इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद हम 10 नंबर के पृष्ठ पर आए थे। अब ये जो मंगल वगैरह जो 6 बातें हैं ना, कौन कौन सी 6 बातें देखिए, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, तो इनमें से इन 6 पर ये शब्द कैसे तैयार हुआ, कौन से धातु से हुआ, इसको कहेंगे धातु। फिर उस पर निक्षेप लगाएंगे नय, फिर उसके एकार्थवाची शब्द, ये निरुक्ति यानी कैसा शब्द तैयार हुआ और उसकी संबंधी अनुयोग, यानी ये छः बातों हर एक के बारे में बताएंगे, यानी मंगल के बारे में ये छः बातें बताएंगे। तो मंगल के बारे में छः बातें, धातु का अर्थ होता है ये कौन से धातु से ये शब्द तैयार हुआ है, उसको यहाँ धातु कहा, क्योंकि शब्द के धातु का अर्थ समझ में आता है तो शब्दों का अर्थ सही रूप से ख्याल में आ जाता है। इसलिए उन्होंने ये बात यहाँ बताई कि वर्ब धातु यानी वर्ब, क्रियापद जिसको कहते हैं हम मराठी संस्कृत, इसमें क्रियापद कहते हैं हिंदी में गुजराती में, और यहाँ संस्कृत में उसको धातु कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को वर्ब कहते हैं। तो यहाँ मगी नाम का धातु है, उसे मंगल शब्द निष्पन्न हुआ है। अभी उसमें वो व्याकरण के विशेष बताए कि कौन सा प्रत्यय लगता है, कैसे बता है, अलच नाम का प्रत्यय लगता है तो उसे मंगल शब्द तैयार होता है। ये बात हुई धातु की। दूसरी बात क्या लगा दी है, हर एक शब्द पर निक्षेप। निक्षेप का अर्थ हमने क्या देखा था, व्यवहार हेतु पदार्थ में जो निर्णय के लिए जो डाला जाता है, जो निर्णय कराता है उसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप में भी छह बातें बताई थी, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब ये मंगल पर ये लगाना है, यानी मंगल पर निक्षेप लगाएंगे तो नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। उसके बाद ये हुआ धातु निक्षेप। फिर नंबर है नय का। देखो ये जो छह बातें मैं बता रही हूँ, 10 नंबर के पृष्ठ पर पहली लाइन में थी कि धातु हो गया, निक्षेप हुआ, अभी नय। तो नय किसको कहते हैं, ये निक्षेप तो हम पदार्थ में लगाए, अब उस एंगल से जो ज्ञान जानने का कार्य करता है। देखो यहाँ लिखा है 3 नंबर के श्लोक का अर्थ, 11 नंबर के पृष्ठ पर ये दूसरा पैराग्राफ हिंदी वाला लिखा है, उच्चारण किए गए अर्थपद, अर्थपद यानी वहां शब्द, और उसमें किए गए निक्षेप को देखकर, यानी उसमें हमने नाम डाला है या उसकी स्थापना की या द्रव्य भाव, उसकी चर्चा बाद में आएगी, तो वो निक्षेप को देखकर अर्थात समझकर पदार्थ को ठीक निर्णय तक पहुंचा देते हैं, यानी पदार्थों का, पदार्थों संबंधी सही ज्ञान हो जाता है उसका निर्णय तक, जो नए तीन नए ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, यानी क्या करते हैं, ज्ञान हो जाता है अच्छी तरह से, उसको नए कहते हैं। अब पदार्थ में किए गए निक्षेप को देखकर नयों का अवतार होता है, ये नीचे से दूसरी, इस पेज पर 11 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन हमने पढ़ी थी, वहां तक अपना हुआ था, यानी निक्षेप के अनुसार जो ज्ञान में होता वो नए है और पदार्थ में जो लगेंगे वो निक्षेप है। इतना क्यों ना, ज्ञेय में निक्षेप लगते हैं और नए वो ज्ञान में होते हैं। अब यहाँ से शंका समाधान शुरू होता है। 11 नंबर का पृष्ठ है, नीचे की लाइन, शंका, नए किसे कहते हैं। 12 नंबर के पृष्ठ पर आए अभी हम, उसके लिए पहले हम 4 नंबर का श्लोक, वो गाथा पढ़ेंगे। न यदित्यम न यो भणियो बहु ही गुण पज्जये ही जम दौवम परिणाम खेत कालं तरेसु अविनठ सभावम। ये परिमाण लिखा है, हमने उसको परिणाम किया था क्योंकि नीचे अर्थ में परिणाम किया हुआ है, यानी हमने क्वेरी करके परिणाम लिखा है वहां पर। तो ये नए किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा बोल रहे हैं, अनेक गुण और उनके अनेक पर्यायों सहित, बहु ही गुण पज्जये ही जम दौवम। अथवा उनके द्वारा एक परिणाम से दूसरे परिणाम में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, और एक काल से दूसरे काल में अविनाशी स्वभाव रूप से रहने वाले द्रव्य को ले जाता है।
जो ले,
यानी द्रव्य कैसा है, तो यानी अन्य अन्य पर्याय की अपेक्षा से भी देखें तो वही का वही द्रव्य है, अर्थात उसका ज्ञान करा देता है, उसे नए कहते हैं। देखो इसके लिए नीचे जो फुटनोट है ना, उस फुटनोट में दो नंबर का पॉइंट देखना है हमको। दौवम सल्लखणीयम उत्पादव वयधुवत्त संयुक्तम गुणपज्जया स्वयं वा जमतम बणन्ति सौ अन्नु। ये पंचासी का गाथा दस की बात है यहाँ का। यानी वो द्रव्य सत लक्षण वाला है, वो उत्पाद वेध्रुव संयुक्त होता है, या दूसरी पद्धति से कहना है तो गुण पर्यायात्मक, यानी गुण पज्जय पर्याय सहित जो है वो द्रव्य होता है। हम कहते हैं गुण पर्याय व द्रव्य, वही बात यहाँ बता रहे हैं। देखो हम इसका विशेष आज पढ़ेंगे, 12 नंबर के पृष्ठ पर चल रहा है। आगम में द्रव्य का लक्षण दो प्रकार से बतलाया है। एक गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए उसे द्रव्य कहते हैं। हम गुणों के समूह को, वो तो बिल्कुल प्राथमिक जिसको कहते, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है वहां से शुरू किया था, परंतु केवल गुण नहीं है, उसका हर समय परिणमन भी चल रहा है। और द्रव्य केवल एक समय के लिए नहीं, पूरा अनादि अनंत फैला हुआ है, इसलिए उसको गुणों का और पर्यायों का समूह कहते हैं। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती का समूह ऐसा भी कहने में आता है। यही बात यहाँ बता रहे कि दो तरह से उसका वर्णन आता है। एक तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए उसे द्रव्य कहते हैं, और दूसरा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत व सत द्रव्य लक्षणम, जो उत्पत्ति विनाश और स्थिति स्वभाव होता है वह सत है। यानी तो तीनों ही उसका स्वभाव है, उत्पाद भी व्यय भी और ध्रुव रूप कायम रहना भी, ये उसका स्वभाव है और वही सत है, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। ये तो द्रव्य का लक्षण बताया, अभी नए क्या है उसको बताते हैं। यहाँ पर नए की निरुक्ति करते समय द्रव्य के इन दोनों लक्षणों पर दृष्टि रखी गई प्रतीत होती है। नए किसी विवक्षित धर्म द्वारा ही द्रव्य का बोध कराता है। यानी द्रव्य में तो अनंत धर्म है, ये नए क्या करता है, किसी एक विवक्षित धर्म द्वारा द्रव्य का बोध कराता है। यानी पूरे द्रव्य को उस एक ही एंगल से देखता है, दूसरे एंगल है वहां पर, वो तो हमने पहले बात की थी, सापेक्ष होते हैं नए। नए के इस लक्षण का संकेत भी गुणपज्जये ही पद द्वारा हो जाता है। ऊपर पहली लाइन में था ना, बहु ही गुणपज्जये ही जम दौवम, यह पद तृतीया विभक्ति सहित होने से उसे द्रव्य के लक्षण में तथा निरुक्ति के साथ नए के लक्षण में भी ले सकते हैं। यानी उसमें अभी हम फिर अभी ये परिभाषा जो है 4 नंबर की, उसको फिर दोबारा देखते। देखो अनेक गुण और उनके अनेक पर्यायों सहित अथवा उनके द्वारा, क्योंकि वो तृतीय विभक्ति है ना, इसलिए उनके द्वारा कहा। क्या करता है ऐसा जो द्रव्य को है, ये द्रव्य जो अविनाशी है, स्वभाव रूप से रहने वाला द्रव्य है, उसका ज्ञान करा देता है, उसको नए कहते। अब बीच वाले पढ़ेंगे हम, एक परिणाम से दूसरे परिणाम में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक काल से दूसरे काल में अविनाशी स्वभाव रूप से रहने वाले द्रव्य को ले जाता है। यानी उसके अन्य अलग अलग एंगल से उसका ज्ञान कराता है। अब 5 नंबर को पढ़ेंगे। तिथय रवयण संग विशेष पत्थार मूल वायरणी दौवठ्यो यपज्जय नयो यशेषा वियप्पासिम। देखो उसका अर्थ देखते हैं। तीर्थंकरों के वचनों के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक नय है, और उन्हीं वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। यानी द्रव्यार्थिक नय जो है वो तो मूल जो द्रव्य आदि बताए उसका व्याख्यान करता है, यानी द्रव्य की अपेक्षा है, और उसके भेदों का कथन करेंगे तो वो पर्यायार्थिक नय हो जाता है। शेष सभी नए इन दोनों नयों के विकल्प अर्थात भेद है।
यहाँ द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए दोनों की बात समझा दी है।
हाँ, मैंने जहाँ सामान्य की मुख्यता से कथन है वो द्रव्यार्थिक है, और विशेष यानी भेदों के कथन की मुख्यता होती है वहाँ पर्यार्थिक में। विशेषार्थ, जिनेन्द्र देव ने दिव्य ध्वनि के द्वारा जितना भी उपदेश दिया है उसका अभेद अर्थात सामान्य की मुख्यता से प्रतिपादन करने वाला द्रव्यार्थिक नय है, और भेद अर्थात पर्याय की मुख्यता से, पर्याय ने वो एक एक समय की पर्याय उतना ही नहीं लेना, पर्याय का अर्थ क्या लेना है, भेद, किसी भी अपेक्षा से भेद उसको पर्याय कहेंगे।
हाँ, बोल बोल।
हाँ, तो कहते हैं अभेद अर्थात सामान्य की मुख्यता से प्रतिपादन करने वाला द्रव्यार्थिक नय है, और भेद अर्थात पर्याय की मुख्यता से कथन करने वाला प्रतिपादन करने वाला पर्यायार्थिक नय है। ये दोनों ही नये समस्त विचारों अथवा शास्त्रों के आधारभूत है, इसलिए उन्हें यहाँ मूल व्याख्याता कहा है। शेष संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द आदि इन दोनों नयों के अवांतर भेद हैं। ये जो सात नयों की चर्चा आएगी अभी कहेंगे तो इसी के वो और पेटा भेद है, जिसको कहीं अवांतर भेद है, सब डिविजन से। यानी शेष संग्रह ने संग्रह नए, व्यवहार नए जो है ना, ये इन्हीं के अवांतर भेद है। संग्रह नए की प्ररूपणा को विषय करना क्या हुआ, छह नंबर, हाँ छह नंबर का श्लोक पढ़ना बाकी। सौवठ्यणय पयी शुद्धा संगह परूवणा विषयो परिरूवं पुनवयणस्थ निश्चयो तस्व व्यवहारो। दौवठ्य पड़ा दौवठ्य नय पयी शुद्धा संगह परूवणा विषयो परिरूवं पुन वयणत्त निश्चयो तस्स व्यवहारो। आप में क्या है, व्यवहारो ही है ना,
व्यवहारो।
हाँ, देखो नीचे उसका अर्थ देखते हैं। संग्रह नय की प्ररूपणा को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की शुद्ध प्रकृति है। देखो इसको क्या कहेंगे, यानी वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। किसको, संग्रह नय को विषय करने वाला, यानी सबको मिलाकर इकट्ठा बताना, यानी बस द्रव्य इतना कह दिया तो द्रव्य कहने वाला वो द्रव्यार्थिक नय जो है वो शुद्ध संग्रहण है, शुद्ध संग्रहण है, उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे। यानी ये जीव पुद्गल इसके भी भेद नहीं किए, इसको कहेंगे शुद्ध संग्रहण है, और उसको विषय करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। यही बात कहते संग्रह नय की प्ररूपणा को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की शुद्ध प्रकृति है, और वस्तु के प्रत्येक भेद के प्रति शब्दार्थ का निश्चय करना उसका व्यवहार है। जैसे द्रव्य कहना यह संग्रह नय हुआ, और ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म ये भेद करना ये व्यवहार नय हुआ, उसको संग्रह नय कहेंगे, इसको व्यवहार नय कहेंगे, उसको द्रव्यार्थिक नय कहेंगे, इसको पर्यार्थिक नय कहेंगे। वैसे हमने जीव कह दिया तो सारे जीव इंक्लूड हो गए, वो संग्रह नय हुआ, और फिर ये संसार ये सिद्ध है त्रस है स्थावर ये भेद करना ये व्यवहार हुआ। यही कहते हैं कि संग्रह नय की प्ररूपणा को विषय करने वाला वो द्रव्यार्थिक नय, वो उसकी शुद्ध प्रकृति वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, और वस्तु के प्रत्येक भेद के प्रति शब्दार्थ का निश्चय करना उसका व्यवहार है। अर्थात व्यवहार नय की प्ररूपणा को विषय करना द्रव्यार्थिक नय की अशुद्ध प्रकृति, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी कहेंगे उसको। विशेषार्थ, वस्तु सामान्य विशेष धर्मात्मक है। उनमें से सामान्य धर्म को विषय करना द्रव्यार्थिक और विशेष धर्म को यानी पर्याय को विषय करना पर्यायार्थिक नय है। उनमें से ये पहले उन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक बता दिया। संग्रह और व्यवहार के भेद से द्रव्यार्थिक ने दो प्रकार का है, द्रव्यार्थिक के दो भेद कर दिए उन्होंने। जो अभेद को विषय करता है उसे संग्रह नय कहते हैं और जो भेद को विषय करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। देखो एक तो संग्रह नय व्यवहार नय ये बातें अलग है, वो निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार यहाँ नहीं लेना है, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक अलग बात है। यहाँ द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कितने भेदों की बात चल रही है, तो द्रव्यार्थिक के उन्होंने संग्रह और व्यवहार ऐसे दो भेद कर दिए हैं। तो जो अभेद को विषय करता है उसे संग्रह नय कहते हैं और जो भेद को विषय करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नय की क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध प्रकृति है। यानी संग्रह नय को विषय करने वाला वो शुद्ध द्रव्यार्थिक और व्यवहार नय को विषय करने वाला वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक हुआ। ये द्रव्यार्थिक क्यों कहा इसका ये भी बात है, क्योंकि अभी भी द्रव्यों के भेद नहीं किए, द्रव्यों तक ही सीमित है। जैसे सभी द्रव्यों कह दिया वो संग्रह हुआ और जीव पुद्गल ये है वो भेद किए, यानी द्रव्यों में भेद किए, पर द्रव्य का भेद नहीं हुआ अभी भी। समझ में आई ना, वो द्रव्य को ही विषय किया है उसने। जीव कहने से सभी जीवों को इकट्ठा किया वो भी द्रव्यार्थिक है, और ये संसार ये मुक्त है वगैरह वगैरह, हम जीवों के जीव को तो फुल इंटैक्ट रखा है इसलिए उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहा। ख्याल में है ना, उसको पर्यार्थिक नहीं कहा, अशुद्ध द्रव्य उसको व्यवहार कहा, पर अशुद्ध वो बात यहाँ नहीं। अभी अवांतर सत्ता वो वही होती है, जैसे महासत्ता ने सभी जीवों को इंक्लूड किया और इसमें से ये हाँ ये अलग अलग उसके हम कहेंगे तो अवांतर सत्ता होती है। यानी यह द्रव्यार्थिक यानी उसने द्रव्य को ही विषय किया है, द्रव्य के भेद यानी द्रव्य में भेद नहीं डाला है अभी, यानी ये गुण है ये पर्याय है ये नित्य अनित्य ऐसे भेद नहीं किए उसने। ये जीव है जीवों में ये संसार ये मुक्त है इस तरह से भेद किया उन्होंने, उदाहरण नहीं दिया है, मेरे अपने ओर से बता रही हूँ। तथा देखो शुद्ध प्रकृति समझनी चाहिए, ये हुए ना, इसे ही संग्रह नहीं कहते हैं। मैंने नीचे चली गई एक मिनट, फिर से ऊपर से
चौथी लाइन,
ऊपर से चौथी लाइन, जो भेद को विषय करता है व्यवहार नय है, ये दोनों ही द्रव्यार्थिक नय की क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध प्रकृति है। संग्रह नय को विषय करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक और ये जो व्यवहार नय की प्ररूपना को, व्यवहार नय ने कौन सा वाला, निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं, संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार, वो अशुद्ध प्रकृति है यानी अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। जब तक द्रव्यार्थिक नय घटपट आदि विशेष भेद न करके द्रव्य सत्स्वरूप है, इस प्रकार द्रव्य को अभेद रूप से ग्रहण करता है, तब तक वह उसकी शुद्ध प्रकृति समझनी चाहिए। यानी लौकिक उदाहरण दिए, वह द्रव्य है इसे ही संग्रह नय कहते हैं। तथा सत्स्वरूप जो द्रव्य है उसके जीव और अजीव ये दो भेद है, जीव के संसारी और मुक्त इस तरह दो भेद है, अजीव भी ये पुद्गल करना पुगदल हुआ है, वो ब्लू पेन देना मैं। पुद्गल ग पहले आया ना इसमें, अजीव भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इस तरह पांच भेद रूप है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रभेदों की अपेक्षा अभेद को स्पर्श करता हुआ भी, देखो इसका महत्व क्या वाक्य, अभेद को स्पर्श करते नहीं, द्रव्य के भी हमने टुकड़े नहीं भेद नहीं किए। अभेद को स्पर्श करता हुआ भी जब वह भेद रूप से वस्तु को ग्रहण करता है तब वह उसकी अशुद्ध प्रकृति समझनी चाहिए, इसी को व्यवहार नहीं कहते। यानी है तो ये द्रव्यार्थिक का ही, अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने इसी को कहे। हाँ, भेद द्रव्यों में नहीं, वो द्रव्य को इंटैक्ट रखा है और उसके भेद किए। यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिए, वस्तु में चाहे जितने भेद किए जावे परंतु वे काल निमित्तक नहीं होने चाहिए। काल निमित्तक होते हैं ना, वो पर्याय की बात आती है। काल निमित्तक भेद है ना पर्याय, पर्याय की बात नहीं करनी चाहिए। यानी अभी हम जीव कहेंगे तो परंतु उसके काल की, काल निमित्तक की उसकी बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि वस्तु में काल निमित्तक भेद की प्रधानता से ही पर्यायार्थिक नय का अवतार होता है। वो पर्यायार्थिक कहेंगे क्योंकि वस्तु में भेद किए हमने। ये नैमति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये क्या हो गया, उसकी अपेक्षा से अगर हम कहेंगे तो काल अपेक्षा में वो पर्यायार्थिक, या हमने गुणों की अपेक्षा से उसमें भेद किए तो भी पर्यायार्थिक नहीं हो जाएगा, ज्ञान गुण दर्शन गुण वगैरह। यानी द्रव्य में हमने भेद करके समझा है। अब व्यवहार ने जो जिस भेद का विषय करता है ना, द्रव्यार्थिक जिसको कहा है, वो द्रव्य को तो अभेद रखा, ये जीव और पुद्गल भेद किए, अजीव जीव और अजीव भेद किए, या अजीव में भी पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये भेद किए। भेद करने पर द्रव्य को अखंड रखा है। अब काल अपेक्षा ने वो पर्याय को विषय कर रहा है, पर्याय को विषय करने वाले नए जो है उसको पर्यायार्थिक नए कहेंगे। यहां लिखा ना देखो, कितना ही भेद करे परंतु वो काल निमित्तक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वस्तु में काल निमित्तक भेद की प्रधानता से ही पर्यायार्थिक नए का अवतार होता है। द्रव्यार्थिक नए की अशुद्ध प्रकृति में द्रव्य भेद अथवा सत्ता भेद ही इष्ट है, काल निमित्तक भेद इष्ट नहीं। सत्ता भेद है वो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, बस इतना ही भेद किया उसने। हाँ, संसारी सिद्ध ले लिया उसके, दो भेद ले लिए उसके,
अशुद्ध
परंतु वो द्रव्य पूरा अखंड रखा उसने। अभी हम 7 नंबर को पढ़ेंगे। मूलनिमेनं पच्छव नयस्स उजुशुद्ध वयन विच्छेदो तस्सदु सद्दादिया साहुपसाहा सुहुम भेया। रुजुसूत्र वचन का विच्छेद रूप वर्तमान काल ही, विच्छेद ने जुदा करना, सेपरेशन इंटरप्शन, पर्यायार्थिक नय का मूल आधार है। यानी पर्यायार्थिक नय किसको विषय करते हैं, तो वर्तमान पर्याय को, यानी वर्तमान काल को उसने विषय किया, वो रुजु सूत्र नय। यानी यहाँ पर्यायार्थिक नयों की भेदों की बात चलेगी। संग्रह और व्यवहार दोनों द्रव्यार्थिक नय हुए, तो रुजुसूत्र वचन का विच्छेद रूप वर्तमान काल ही पर्यायार्थिक नय का मूल आधार है। यानी उसमें वर्तमान काल को जुदा किया है, वो पर्यायार्थिक नय का आधार है। यानी पर्यायार्थिक नय पर्याय को वर्तमान को विषय करती है, और शब्दादिक नय शाखा उपशाखा रूप उसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद है। यानी ये पर्यायार्थिक नय के ही वो और आगे आगे सूक्ष्म भेद है। कौन से शब्दादि कहने, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। पहले हमने नयगम को अभी नहीं लिया है, हमने संग्रह लिए, व्यवहार लिए, उसके बाद रुजु सूत्र जो वर्तमान पर्याय को विषय करने वाला है उसको सेपरेट बताता है। उसमें और सूक्ष्मता की बात लेते हैं तो उसमें ही समभिरूढ़ और एवं भूत आता है।
तो छह हुए ना,
नैगम को हमने छोड़ा है ना, पहला शब्द है ना, शब्द समभिरूढ़ एवं भूत,
समभिरूढ़ एवं भूत तीन,
और संग्रह और संग्रह और व्यवहार, और नैगम है, नैगम ने की चर्चा भी की नहीं उन्होंने। हाँ, नैगम में वही है ना, एक ही द्रव्य की वो भूत या भविष्य की पर्याय को, वर्तमान पर्याय को, यानी द्रव्य वही का वही है, वो बात करेंगे अभी। विशेषार्थ, वर्तमान समयवर्ती पर्याय को विषय करना रुजु सूत्र ने है। अभी इसमें भी बाद में बताएंगे, वो शुद्ध रुजु सूत्र मात्र एक समय की पर्याय को विषय करेगा, और स्थूल में क्या करेंगे हम, हमारा वर्तमान है, हमारा अभी हुंडा व सर्पिणी चल रहा है, या हमारा दस कोड़ा कोड़ी का हुंडा व सर्पिणी, उसको हम वर्तमान कह रहे हैं, वर्तमान 24 है, ये क्या है, ये बहुत स्थूल अपेक्षा से कह रहे हैं। वर्तमान में मनुष्य पर्याय चल रही, भले वो एक समय की भी है और पूरे अभी हम जन्म से कह रहे हैं ना, ये हम इतने साल के हैं, ये स्थूल अपेक्षा होती है। अभी हमारा पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल तो पूरा 21,000 वर्ष का है, उसको हम अपना वर्तमान कहते हैं, ये बात है। अब यहाँ कहते हैं वर्तमान समयवर्ती का समय, ये सूक्ष्म रुजु सूत्र ने शुद्ध उसी को कहेंगे। वर्तमान समयवर्ती पर्याय को विषय करना रुजु सूत्र ने है, इसलिए जब तक द्रव्यगत भेदों की ही मुख्यता रहती है तब तक व्यवहार नहीं चलता है। द्रव्यगत भेद ने वो द्रव्यों को इंटैक्ट रखा और उसमें भेद किए, और जब काल निमित्तक भेद प्रारंभ हो जाता है, काल निमित्तक है ना पर्याय वाला, तभी से रुजु सूत्र नय का प्रारंभ होता है। काल निमित्तक है ना, उसके वर्तमान काल को, काल वाले द्रव्य को अलग निकाला, तो वर्तमान काल तो पर्याय की अपेक्षा कहेंगे हम, द्रव्य तो वही का वही है, तो उसमें वर्तमान काल का द्रव्य ने उसकी वर्तमान काल की पर्याय को हमने नजर किया, पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को देखा, तो ये हो जाएगा रुजु सूत्र ने। शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, इन तीन नयों का विषय भी वर्तमान पर्याय मात्र है, परंतु उनमें रुजु सूत्र के विषयभूत अर्थ के वाचक शब्दों की मुख्यता से, यानी रुजु सूत्र ने किसको विषय करता है, वर्तमान पर्याय को, उसको बताने वाले जो शब्द है वो शब्दों की विशेषताएं यहाँ बताई जाती है। तो जो अर्थभेद इष्ट है, यानी शब्दों की मुख्यता से जो उसमें जो कुछ अर्थ में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए उनका विषय रुजु सूत्र से सूक्ष्म, यानी जो शब्द नए है वो रुजु सूत्र से सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर समभिरूढ़ है वो शब्द नए से भी और सूक्ष्म है, इसको सूक्ष्मतर कहा, और सूक्ष्मतम एवं भूत है वो उससे भी सूक्ष्म है, वो शब्दों में ही विशेषताएं करेगा। ये सारे ही जो है ना, रुजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये पर्याय को ही विषय करने वाले, वर्तमान पर्याय को। तो जो रुजु सूत्र ने विषय बनाया है पर्याय को, द्रव्य को उस रूप देख रहा है, अब उस द्रव्य को उस पर्याय रूप से बताने वाले जो कोई शब्द है, वो शब्दों में जो कोई डिफरेंस होगा वो तो बताएंगे अभी, अभी हमने उसकी चर्चा नहीं की है। तो फिर लिंग भेद वगैरह, फिर उसमें भी कुछ उसके व्यभिचार टाल कर वो होने चाहिए वगैरह वगैरह बातें आई। अर्थात देखो, यानी ये तो जो रुजु सूत्र के ये और फिल्टर लगाएगी उसमें, और सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा शब्दों की अपेक्षा से, समझाने के लिए जो शब्द यूज किए ये सारे ही पर्याय, पर्याय को ही विषय करने वाले है, पर पर्याय को विषय करने वाले जो न है वो जो शब्द वहाँ यूज करेंगे हम, वो पदार्थों को बताने के लिए शब्द, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो, अर्थात रुजु सूत्र के विषय में लिंग आदि से भेद करने वाला शब्द ने, लिंग आदि से भेद करने वाला है ना, जैसे हमने कहेंगे वो तो भार्या है, स्त्री है, कलत्र कह दिया, कलत्र नपुंसकलिंगी है, तो लिंग भेद हुआ, उसके कारण शब्द भी भेद हो सकते हैं। शब्द नय से स्वीकृत लिंग वचन वाले शब्दों में व्युत्पत्ति भेद से अर्थ भेद करने वाला समय भी रूढ़ नय, और पर्याय शब्द को उस शब्द से ध्वनित होने वाले क्रिया काल में ही वाचक मानने वाला एवं भूत नय समझना चाहिए। देखो ये इसके उदाहरण आगे चलकर दिए हैं।
86
90 पेज लिखा है मेरे में। अच्छा वो 86 से शुरू हुआ है क्या?
एक्चुअली
86 पर से शुरू हुआ है रजू सूत्र की बात वहां से है।
द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद है। 85 पे है।
वो अर्थन है और व्यंजन नय हो जाते हैं। नहीं वो तो वो बहुत डिटेल हो जाएगी, हमें इतना ही देखना था ना अभी।
हाँ।
देखो अभी हमने क्या किया, वर्तमान पर्याय मात्र को सूचित करता है वो रुजु सूत्र ने। तो उसके भी शब्द समभिरूढ़ एवं भूत ये जो तीन भेद हुए 87 पर लास्ट लाइन। अभी हमने उसके पर्यायार्थिक के भेद नहीं लिखे, अर्थन है और व्यंजन है, उसके भेद हम बाद में देखेंगे, अभी हमारा विषय उतना ही देखना है। देखो लास्ट लाइन का लास्ट शब्द है ना, शब्द के आधार से अर्थ के ग्रहण करने में समर्थ शब्द ने है। पेज नंबर 88 पर आ गए।
पहली लाइन 88 पर फर्स्ट लाइन,
क्योंकि यह नए लिंग संख्या काल कारक पुरुष उपग्रह के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला है, यानी उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता, वो शब्द नय को वो एक्सेप्ट नहीं है। इसके उदाहरण हम बाद में देखेंगे। अभी इसके बाद 90 पेज पर आना। शब्द भेद ने वो लिंग संबंधी कोई दोष नहीं होना चाहिए, वचन संबंधी दोष नहीं होना चाहिए, ये कह दिया। अब कहते हैं मैं एक ही समान लिंग वाले जो शब्द उस एक पदार्थ के लिए यूज किए, तो समभिरूढ़ नय क्या करता है? देखो 90 पेज पर लास्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ। शब्द ने भेद से जो नाना अर्थों में अभिरूढ़ होता है उसे समभिरूढ़ नय कहते हैं। जैसे एक ही इंद्र के लिए अलग अलग शब्द आते हैं, इंद्र होता है, पुरंदर होता है, शक्र होता है, यानी वो है तो एक ही पर्सन के लिए शब्द आते हैं, परंतु उसका शब्द का अर्थ निरुक्ति अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस नय की दृष्टि से वो एकार्थी नहीं हो सकते, पर्यायार्थी नहीं हो सकते, पर्यायवाची नहीं हो सकते, यानी उसका हर एक का मीनिंग अलग अलग लेना पड़ेगा। यानी शब्द नय ने सबको स्वीकार किया, केवल वहां लिंग का वो दोष नहीं होना चाहिए, परंतु समभिरूढ़ ने उसमें भी और ज्यादा जिसको कहेंगे चौकसाई की, सूक्ष्मता ले ली। और एवं भूत में तो अभी हम कहें ना ये पुजारी, तो जिस समय वो पूजा कर रहा है उसी को पुजारी कहें, इस तरह से ये चर्चा आने वाली है, इसलिए हम अपने पेज पर चलेंगे। 14 नंबर पर पढ़ रहे थे। सब जगह यही है, सभी है ये, नए चक्र में भी ये है सारे, क्योंकि ये सभी ग्रंथों में आगम से परंपरा से यही उदाहरण आए हैं।
और वो संस्कृत
संस्कृत में है, क्योंकि वो तो
विशेष एप्लीकेबल होते हैं आजकल की भाषा में। हाँ, नहीं होते,
हमारे अलग उदाहरण देने पड़ेंगे उसके लिए। ये तो मूल शास्त्रों में जो उदाहरण थे वही चले हैं और उसी को आगे बढ़ाते हम।
नहीं नहीं, मुझे ये बताना है कि ये जो सूक्ष्मता में हम जा रहे हैं ना, शब्द ने समभिरूढ़ ने, ये तो संस्कृत के शब्दों से,
क्योंकि उसके व्याकरण अलग है।
और आपने हिंदी में मराठी में ऐसे नहीं मिलेंगे जल्दी।
हाँ, जल्दी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मगर वो तो क्योंकि उसके व्याकरण के नियम कुछ अलग है, वो तो ढूंढना पड़ेगा फिर वो कौन से क्या कहाँ होते हैं, वहाँ समझाना आसान है।
14 नंबर
14 नंबर पर पढ़ रहे थे। देखो पहली लाइन, अर्थात रुजु सूत्र के विषय में, विषय क्या है? वर्तमान पर्याय उसके, लिंग आदि से भेद करने वाला शब्द नहीं, यानी वो तो समान लिंग होनी चाहिए, समान वचन होने चाहिए, उसमें कुछ एक ही शब्द के लिए अलग अलग वापरते हैं वैसे शास्त्र में या व्याकरण में या साहित्य में, शब्द ने को वो स्वीकार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लिंग आदि से भेद करने वाला शब्द ने, शब्द ने से स्वीकृत लिंग वचन वाले शब्दों में, यानी शब्द ने जिसको एक्सेप्ट किया है समभिरूढ़, उसमें भी और भेद डालता है। जैसे हमने इंद्र पुरंदर शक्र ये भेद तीनों ही समान एक वचनी है और ये पुरुष लिंगी है, फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, समभिरूढ़ ने उसको नहीं कहेंगे। हाँ, एकार्थवाची इसको शब्द ने उसको स्वीकार किया। हाँ पुल्लिंग, तो कहते उन जो शब्द ने जो स्वीकृत किया है उसमें व्युत्पत्ति भेद से, व्युत्पत्ति ने शब्द कैसे तैयार हुआ, अर्थ भेद करने वाला समभिरूढ़ है, यानी वो तो शब्दों के अर्थ से उसके अलग अलग अर्थ करेगा वो, यानी और उसमें ज्यादा सूक्ष्मता आ जाएगी। और हाँ करने वाला ये मैंने अभी जो बताया जो ऐश्वर्य वाला वो इंद्र है, हाँ ये उसने उसको अलग अलग अर्थ में स्वीकार किया, एक अर्थ में स्वीकार नहीं किया। शब्द ने तो एक अर्थ में स्वीकार कर दिया था, इन्होंने हर एक को अलग अलग रखा, हर एक का अलग अर्थ होता है ये उसने बताया, इसलिए वो है समभिरूढ़। और पर्याय यानी शब्द को उस शब्द से ध्वनित होने वाले क्रिया काल में ही वाचक मानने वाला एवं भूतनय समझना चाहिए। जैसे जो पूजा का काम करता है उसको हम पुजारी कहते हैं, परंतु जो पूजा कर रहा है तभी उसको वो एवं भूतनय उसी को स्वीकार करेगा। वो क्रिया को बताने वाला शब्द है, वो क्रिया काल जो वो क्रिया हो रही है उस काल में उसको स्वीकार है, अन्य काल में उसको स्वीकार नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इस तरह ये शब्दाधिक नय यानी शब्द समभिरूढ़ एवं भूत उस रुजु सूत्र नय की शाखा उपशाखा है, यह सिद्ध हो जाता है। अतएव रुजु सूत्र नय पर्यायार्थिक नय का मूल आधार माना गया है, क्योंकि उसके के पहले उसके फिर उसके भेद करते चले जाएंगे सूक्ष्मता से, ये उसका मूल आधार है। आठ नंबर, उपजन्ति भावानियमेन पज्जवणयस्य दौवठ्यस्य सौवं सदा अनुपन्नम विनट्ठम्। देखो कितना बहुत सरल बताया है, यानी उत्पन्न होता है और नाश होता है ये तो पर्यायार्थिक नय से है, और द्रव्यार्थिक नय से तो अनुत्पन्न और अविनष्ट है सब कुछ। देखो आठ नंबर का अर्थ, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ नियम से उत्पन्न होते और नाश को प्राप्त होते, क्योंकि हम पर्याय की ओर से द्रव्य को देख रहे, यानी द्रव्य को पर्याय के रूप से देख रहे, वर्तमान पर्याय के रूप से देख रहे, तो द्रव्य अभी उत्पन्न हुआ और द्रव्य ही नाश हुआ, किस रूप से? वर्तमान पर्याय से उत्पन्न हुआ और पूर्व पर्याय रूप से नाश हुआ, यह नय की कथन है। इसको सर्वथा मानने वाले वो क्षणिकवादी है, वो तो सर्वथा ही द्रव्य का नाश हो जाता है और सर्वथा ही द्रव्य नया उत्पन्न होता है मानते हैं। हमारे पास दूसरा नय है कि वो द्रव्यार्थिक नय है वहां पर, जो उसको अविनाशी मानता है, अनुत्पन्न और अविनाशी मानता है, परंतु उनको वो स्वीकार नहीं है, उनको नयों की बात ही स्वीकार नहीं, वो पूरा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा मानते हैं कि द्रव्य ही नष्ट हो जाता है, क्षणिकवादी। ख्याल में है ना? तो नये ने एक एंगल को वो बता रहे, उस एंगल से द्रव्य नष्ट होता हुआ दिख रहा, उस एंगल से द्रव्य उत्पन्न होता हुआ दिख रहा, परंतु उस समय वो दूसरा नय वहां स्थित है जो द्रव्य को कायम रहने वाला भी बता रहा। यही कहते हैं पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ यानी द्रव्य ही नियम से उत्पन्न होते और नाश को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पूर्व पर्यायों का नाश होता है। इसलिए हर समय द्रव्य नया उत्पन्न हो रहा है और पूर्व पर्याय रूप से नाश हो रहा है, किंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वे यानी पदार्थ यानी द्रव्य सदा यानी हमेशा ही अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाव वाले हैं। उनका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है। ये इस नये से देखने वाले को उसमें कुछ उत्पाद वे दिखता ही नहीं, उस नये से देखने वाले को, क्योंकि अभी देखने का एंगल बदल दिया है, पूरे द्रव्य को ले लिया, तब पर्याय को देख नहीं रहे, देख नहीं रहे, उसको गौण कर दिया है, वो है ही नहीं, उसकी बात नहीं चल रही है, वो है। प्रमाण दृष्टि से देखेंगे तब उसमें वो तो कायम रहने वाला भी अंश है और नष्ट होने वाला भी अंश है। इसलिए कहते द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा वे ने द्रव्य सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वभाव वाले हैं। उनका न तो कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता है। वे सदा काल स्थिति स्वभाव रहते हैं। स्थिति स्वभाव, स्थिति यानी कायम रहे, वैसा का वैसा रहना,
ध्रुव
स्वभाव। विशेषार्थ, उत्पाद दो प्रकार का माना गया है, उसी प्रकार व्यय भी, एक स्वनिमित्तक और दूसरा परनिमित्तक। इसका खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए, प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से अगुरु लघु गुण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद माने गए हैं। यानी प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में उसके अपने अविभाग प्रतिच्छेद है जो अनंत होते हैं। जो षडगुण हानि और षडगुण वृद्धि रूप से निरंतर प्रवर्तमान रहते हैं, इसलिए इनके आधार से प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद और व्यय हुआ करता है, इसी को स्वनिमित्त उत्पाद व्यय कहते हैं। यानी द्रव्य में ही अपने स्वयं के स्वभाव से ही ऐसा परिणाम होता है कि ये जो अगुरुगुण के अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें षडगुण हानि षडगुण वृद्धि होती रहती है। उसी प्रकार परनिमित्त से भी द्रव्य में उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। जैसे स्वर्णकार ने कड़े से कुंडल बनाया, यहाँ पर स्वर्णकार के निमित्त से कड़े रूप सोने की पर्याय नष्ट होकर कुंडल रूप पर्याय का उत्पाद हुआ है और इसमें स्वर्णकार निमित्त है, इसलिए इसे परनिमित्त उत्पाद व्यय समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्यों में भी, देखो निष्क्रिय कहा क्योंकि उसमें क्रियावती शक्ति नहीं, प्रदेशों का हलन चलन नहीं है, परंतु वो तो उत्पाद व्यय से रहित है ऐसा नहीं समझना, क्योंकि द्रव्य है तो द्रव्य का लक्षण ही उत्पाद व्यय और ध्रुवता है। इसलिए कहते आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्यों में भी, तो और कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय है प्रतिभा में? आकाश तो है, धर्म अधर्म और काल, यानी ये चार द्रव्य निष्क्रिय है।
निष्क्रिय क्यों कहा? निष्क्रिय क्यों कहा उन द्रव्यों?
अभी बताया था ना, इनको निष्क्रिय क्यों कहा? क्रियावती शक्ति ने प्रदेशों का हलन चलन नहीं। अभी अभी हाँ अभी अभी दो दस सेकंड पहले बताया था ना। देखो सोने का कुंड, ये हमारी बांगड़ी थी तो उसका हार बनाया, तो हार बनाया तो उसमें वो सुवर्णकार हम कहें, इसमें निमित्त कौन है? जैसे मिट्टी का घट बना, निमित्त कौन? हम कुंभकार को कहते, कुम्हार को कहते। ऐसे सोने की बंगड़ी थी उसका हार बनाया, उसमें निमित्त किसको बताया?
सोनार
को, सोनी कहो या सोनार कहो, सुवर्णकार कहो, तो उसके निमित्त है, वहाँ निमित्त है और यहाँ वो द्रव्य की पर्याय बदल गई। षडगुण हानि का परिणाम तो हर समय चल ही रहा है, वो तो हो ही रहा है अलग से, और वो अलग है, ये सरगुणी वाला और लघु गुण अलग है। हाँ, यानी ऐसा परिणमन द्रव्य में सहज, द्रव्य का सहज स्वभाव है, अनादि से उसके षड्गुण हानि वृद्धि होती रहती है हर एक द्रव्य में। निमित्त किस में है? वो कुंडल है, वो कड़ा बना, उसमें उसका निमित्त लिया, अगुण लघु में नहीं लिया। हम जिसको निमित्त कहते हैं वो निमित्त परद्रव्य होता है, जो परद्रव्य के निमित्त से जहाँ कार्य होता है उसको वो परद्रव्य निमित्त कार्य कहा, उसमें अगुरु लघु गुण की बात नहीं लगाना है। दो बातें भिन्न ली, यहाँ लिखा ना स्वनिमित्त और परनिमित्त। स्वनिमित्त ने उसके अपने ही कारण अगुरु लघु गुण में जो हानि वृद्धि होती है, वो निमित्त ने वो निमित्त को नहीं लेना। देखो निमित्त का अर्थ होता है कारण, कारण भी दो प्रकार के होते हैं, उपादान और निमित्त। यहाँ स्वनिमित्त और परनिमित्त जो कहा वो अपने कारण और पर के कारण ऐसा लेना, पर के कारण वो निमित्त रूप लेना और अपने कारण वो उपादान रूप लेना। यानी जो षड्गुण हानि वृद्धि उसका उपादान से होती है और यहाँ पर का निमित्त लगता है। निमित्त शब्द के दो अर्थ है, एक कारण लिए कारण के लिए निमित्त शब्द आता है और एक निमित्त के लिए निमित्त शब्द आता है। यहाँ ये कारण के रूप में लिया है, अपने ही कारण होता है वो अगुरु लघु का है, और जहाँ पर के कारण है ना, पर निमित्त से होता है कहेंगे हम उसको, होता अपने से है परंतु वहाँ उसका पर का निमित्त है तो उसको हम कहेंगे हाँ पर निमित्त। नहीं, एक निमित्त उसके निमित्त यानी उसके कारण से, यानी उपादान से कार्य होता है उसको भी स्वनिमित्त कहेंगे। परसों कलशामृत में ऐसी बात आई ना, यहाँ निमित्त ने स्वयं के निमित्त से ऐसा नहीं लेना, स्वयं के कारण से। हाँ,
योग्यता से, स्वयं की योग्यता से।
देखो परसों एक कलशामृत में एक श्लोक आया था, उसमें ऐसे निमित्त शब्द दो बार आया था और स्वामी जी ने भी बताया और वहाँ कलशामृत में भी बताया। यहाँ निमित्त ने एक जगह निमित्त को निमित्त के अर्थ में लेना है, एक जगह वो कारण रूप से लेना। अभी हमारी छठी पुस्तक चल रही है, पांचवी पुस्तक में आया था लास्ट क्लास में ही था वो निमित्त शब्द, एक ही श्लोक में दो बार आया था। वैसे भी यहाँ पर वही उसी अर्थ में लिया। देखो हम यहाँ आए थे,
एक मिनट, प्रतिपदाई का क्या प्रश्न था समझ में नहीं आया।
उन्होंने वहाँ अगुरु लघु गुण तो उसमें नहीं लगाना है, अगुरु लघु का हर समय चल रहा है और वो अनादि से वो स्वभाव पर्याय बताइए। हाँ, प्रत्येक पर्याय में और उसको अनादि से स्वभाव पर्याय में ली है षड्गुण हानि। हाँ, यानी जो विभाव रूप पर्याय चल रही है तब भी, यानी संसारी अवस्था में कहो या कोई भी निवोध आदि भी चल रहे, तो उनको अगुरु लघु गुण का जो परिणमन है वो उसकी स्वभाव पर्याय ये लेना है। यहाँ लिखा ना आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्यों में भी स्वपर निमित्त उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिए। स्वपर निमित्त ने स्वपर के कारण ऐसा लेना, स्वनिमित्त ने वो उसका तो स्वभाव रूप पर्याय है, अपने कारण हो रही है। क्योंकि आकाश आदि निष्क्रिय द्रव्य दूसरे पदार्थों के अवगाहन गति आदि में कारण पड़ते हैं, यानी आकाश है वो अवगाहन में, धर्म है वो गति में, अधर्म है वो स्थिति में, ऐसा सब में लगाना। और अवगाहन गति आदि में निरंतर भेद दिखाई देता है, इसलिए अवगाहन गति आदि के कारण भी भिन्न होने चाहिए। क्या कहते हैं, जीव की गति कभी हिनाधिक होती है और उसकी गति भी अलग अलग जगह होगी, तो कहते कि उसका कारण में भी डिफरेंस होना चाहिए, उसकी अपेक्षा कारण में भी अलग अलग भेद किए उन्होंने, ये कहना चाहते हैं। स्थित वस्तु के अवगाहन में जो आकाश कारण है उससे भिन्न दूसरा ही आकाश क्रिया परिणत वस्तु के अवगाहन में कारण है। इस तरह अवगाह्यमान वस्तु के भेद से आकाश में भेद सिद्ध हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो कोई स्टेडी चीज है उसको आकाश ने अवगाहना दी, और जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको भी आकाश है, तो उसके भेद से आकाश में भेद किए उन्होंने। पर्याय तीन का विषय करना है ना, इसलिए वो परनिमित्त से उत्पाद व्यय हुआ, और इसलिए आकाश में परनिमित्त से भी उत्पाद व्यय का व्यवहार किया जाता है। व्यवहार है, उपचारी कर रहे वापस। इसी प्रकार धर्मादिक द्रव्यों में भी परनिमित्त से उत्पाद और व्यय समझ लेना चाहिए। वहाँ उगाना की बात है, फिर गति में ले लेंगे। वो विमान की गति है, मनुष्य की गति है, चलने वाले की है, वही जो विमान में बैठकर जा रहे है उसकी गति है, तो इसके भेद करते जाओ, तो ये उपचार करना है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नाश को भी प्राप्त होते हैं। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा पर्याय की ओर से द्रव्य को देखने पर पदार्थ उत्पन्न होते और नाश होते, ये कहना चाहते वो सर्वथा लिया, और वैदिक ने वो द्रव्यार्थिक वाला वो सर्वथा ले लिया, यानी उसने आधा अधूरा ही पकड़ लिया, तो इसलिए वो पूरा ही गलत हुआ। इस प्रकार अनंत काल से अनंत पर्याय परिणत होते रहने पर भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, और न एक द्रव्य के गुण धर्म बदल कर कभी दूसरे द्रव्य रूपी हो जाते हैं। अतएव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा पदार्थ सर्वदा स्थिति स्वभाव है। सर्वदा ने हमेशा, सदाकाल, क्या कहते हैं, ये जो हमने जो पर्यायार्थिक नय से द्रव्य का नाश और उत्पाद होता है, और द्रव्य की द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा उसमें ना उत्पाद है ना व्यय है, वो उसकी वैसी की वैसी स्थिति बनी रहती है अनादि से अनंत काल तक। उन सात नयों में से ऊपर एक करेक्शन है तीसरी लाइन में, दौवठ्यनयस्य स डबल स लगाया वहां पर, हमने पहली बार पढ़ा था तभी लगाया था, अब इसका अर्थ देखते हैं। उन सात नयों में से ये उन सात कहां से, तत्थ ऐसा नहीं, उन शब्द कहां से लाया, तथ्य ने वहां नेगर संघ व्यवहार ने सुवे निखेवा हवंती। हाँ देखो, उन सात नयों में से नैगम संग्रह और व्यवहार, इन तीन नयों में, ये तीन नये कैसे, द्रव्यार्थिक नये हैं, नाम स्थापना आदि सभी निक्षेप होते हैं, क्योंकि इन नयों के विषयभूत तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य में सभी निक्षेप संभव है। अभी एक एक नए नए नाम आ गए,
यहाँ सादृश्य सामान्य में महासत्ता को लिया,
वो नाम, हाँ,
और तद्भव सामान्य में
ये महासत्ता और अवांतर सत्ता होती है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये जो द्रव्यार्थिक नय है कौन से, नैगम है। नैगम तो दो अलग अलग पर्याय को विषय करने है, द्रव्य तो वही का वही है, इसलिए सब द्रव्यार्थिक नय के विषय है। तो नैगम संग्रह व्यवहार में ये तीन नयों में नाम स्थापना आदि सभी निक्षेप होते हैं। सभी यानी कौन कौन से, क्षेत्र और काल भी, छह नये लगाने, छह निक्षेप लगाने, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव छो लगते हैं, क्योंकि नयों के विषयभूत तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य में सभी निक्षेप संभव है। अभी इसका अर्थ देखेंगे। शंका, ये तभी हमने नए चक्र पेज 260 पर निकाल के पढ़ा था उस नाव से। द्रव्यार्थिक नए में भाव निक्षेप कैसे संभव है, क्योंकि द्रव्य और भाव भी लिया ना, और भाव निक्षेप में उसका तो हाँ वर्तमान उस रूप होने वाला, अर्थात जिस पदार्थ में भाव निक्षेप होता है वह तो उस पदार्थ की वर्तमान पर्याय है, परंतु द्रव्यार्थिक नए सामान्य को विषय करता है पर्याय को नहीं। इसलिए द्रव्यार्थिक नए में जिस प्रकार दूसरे निक्षेप घटित हो जाते हैं उस प्रकार भाव निक्षेप घटित नहीं हो सकता। भाव निक्षेप का अंतर्भाव तो पर्यायार्थिक नए में संभव है, ये प्रश्न था। उसका समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही भाव कहते हैं। पर्याय से युक्त वाला द्रव्य लेना है, अकेला पर्याय को नहीं लेना है यहाँ पर, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्य की आरंभ से लेकर अंत तक की पर्यायों में आ ही जाती है, यानी अनादि अनंत पर्यायों का पूरा समूह ही द्रव्य है और उसमें वो भी इंक्लूडेड है। तथा द्रव्य अर्थात सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित है, यानी गर्भित है। पर्याय के बाद वाला वो फुल स्टॉप निकाल दो। त्रिकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित है, अतएव द्रव्यार्थिक नय में भाव निक्षेप भी बन जाता है। यहाँ पर पर्याय की गौणता और द्रव्य की मुख्यता से भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में अंतर्भाव समझना चाहिए। वहाँ वो पर्याय को गौण करके द्रव्य को मुख्य करके उसको द्रव्यार्थिक नय में वो भाव निक्षेप भी लगा सकते हैं, ये कहना चाहते वहां पर। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक संग्रह नय में भी भाव निक्षेप का अंतर्भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो महासत्ता अपनी कुक्षी में समस्त विशेष सत्ताओं को समाविष्ट किए हुए है और जो सदाकाल अवस्थित है उसे ही भाव रूप से स्वीकार किया गया है।
महासत्ता में अवंतर
सत्ता गर्भित है,
अपने कुक्षी में ने अपने कही
है उसमें गर्भित कर दिया है, यानी उसी में वो लीन है,
इंक्लूड हो गए,
इंक्लूड हो जाते। ये महासत्ता अवंतर सत्ता पंचास्तिकाएं में भी बहुत विस्तार से ली है, प्रवचन सार में भी उसकी चर्चा है। अभेद रूप से वस्तु को जब भी ग्रहण किया जाएगा तभी वह वर्तमान पर्याय से युक्त होगी ही। क्या कहना चाहते हैं, जब हम पूरे वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वस्तु तो हमेशा उसके वर्तमान पूरे पर्याय रूप से तो रहती ही है, इसलिए वर्तमान पर्याय का अंतर्भाव महासत्ता में हो जाता है और शुद्ध संग्रहनय का महासत्ता विषय है, अतएव संग्रहनय में भी भाव निक्षेप का अंतर्भाव हो जाता है। पहले में उन्होंने द्रव्यार्थिक नय में कैसे होता है उसकी बात की, अब उसके जो भेद है संग्रह नय वगैरह उसमें भी होता है ये बात बता रहे हैं। यहाँ पर भी पर्याय की गौणता और द्रव्य की मुख्यता समझना चाहिए। अब यहाँ 9 नंबर का जो है शंका रूप से है, नामम ठवणादविये तिये सदौवट्ठिय सनिच्छेयो भावोदुपजवट्ठिय परुवणाये सपरमट्ठो। नाम स्थापना और द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिक नय के निक्षेप है और भाव पर्यायसिक नहीं की प्ररूपणा है, यही परमार्थ सत्य है। ये उसकी शंका है क्योंकि द्रव्यातिक में ये तीनों तो उसके स्वीकार है। सन्मति तर्क के इस कथन से, ये सन्मति तर्क नाम का जो ग्रंथ है उसके कथन से भाव निक्षेप का द्रव्यार्थिक नय में अथवा संग्रह नय में भी अंतर्भाव होता है, यह व्याख्यान क्यों नहीं विरोध को प्राप्त होगा, ऐसा प्रश्न है। शंकाकार का यह अभिप्राय है कि सन्मतिकार ने, सन्मति तर्ककार ने भाव निक्षेप का केवल पर्यायार्थिक नय में अंतर्भाव किया है, ये भी नहीं चाहिए यहाँ पर। क्योंकि केवल शब्द लगाए ना, केवल के बाद भी कैसा लगेगा। परंतु यहाँ पर उसका द्रव्यार्थिक नय में अंतर्भाव किया है, इसलिए यह कथन तो सन्मतिकार के कथन से विरुद्ध प्रतीत होता है, यह उनको कहना था। अब उसका यहाँ समाधान करें। देखो नीचे जो फुटनोट में एक आंकड़ा लिखा है वो स्वतः ने सन्मति तर्क में क्या लिखा है, देखो नामोक्तम स्थापना द्रव्यम द्रव्यार्थिक नयार्पणात् पर्यायार्थार्पणात् भावस्तन्यासः सम्यक इति। यानी वहां वो भाव पर्यायार्थिक नय का विषय बताया उन्होंने, इसलिए यहाँ शंका पूछी गई। यहाँ तो आप द्रव्यार्थिक में उसको भी ले रहे हैं, सभी निक्षेपों को लिया आपने, तो ये कैसे संभव है, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सन्मति तर्क में जो पर्याय रूप स्वलक्षण क्षणिक है इसे भाव रूप से स्वीकार किया गया है, अर्थात सन्मति तर्क में पर्याय की विवक्षा से कथन किया है, और यहाँ पर द्रव्य से अभिन्न वर्तमान पर्याय को द्रव्य मानकर कथन किया है, इसलिए कोई विरोध नहीं आता है। वहाँ पर्याय को लक्ष्य किया है और यहाँ वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को लक्ष्य में लिया है। यानी वो अब ज्ञाता के या बोलने वाले के वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर है। पर्याय को देखते हुए हम द्रव्य को देख, पूरे द्रव्य को देख रहे हैं कि अकेले पर्याय को देख रहे हैं, उस पर से ये अलग अलग हो सकते हैं। सन्मति तर्क में पर्याय की विवक्षा ली थी, यहाँ पूरे द्रव्य की है। अब रुजु सूत्र नय में पहले बात हुई थी नयगम संग्रह और व्यवहार में सभी निक्षेप लगते हैं, यहाँ तक बात ख्याल में। अब रुजु सूत्र नय में स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निक्षेप संभव है। देखो स्थापना निक्षेप क्या होती है, एक पदार्थ में दूसरे वस्तु की हम कल्पना करते हैं। अब यहाँ तो रुजु सूत्र नय का विषय क्या है, द्रव्य की वर्तमान पर्याय को, यानी द्रव्य को उस पर्याय रूप से देखना है। हाँ, उस द्रव्य की अपनी पर्याय रूप से देखना है, उसमें अन्य द्रव्य का वहाँ स्थापना का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए उसको वो स्वीकार नहीं है। देखो रुजु सूत्र नय में स्थापना निक्षेप को छोड़कर शेष सभी निक्षेप संभव है, क्योंकि रुजु सूत्र नय में सादृश्य सामान्य का ग्रहण नहीं होता और स्थापना निक्षेप सादृश्य सामान्य की मुख्यता से होता है। सादृश्य ये महासत्ता तद्भव सामान्य ने वो अवान्तर सत्ता होती है, सादृश्य सामान्य महासत्ता को कहते हैं। फिर शंका, रुजु सूत्र तो पर्यायार्थिक नय है, उसमें द्रव्य निक्षेप कैसे घटित हो सकता है, क्योंकि अभी देखो रुजु सूत्र ने किसको विषय करता है, वर्तमान पर्याय से युक्त वो द्रव्य। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, कि देखो निक्षेप के नाम क्या है, नाम स्थापना, उसने स्थापना को स्वीकार नहीं किया, द्रव्य ने, क्षेत्र ने, काल ने, भाव ने। तो कहते द्रव्य ने क्या करता है, द्रव्य निक्षेप कैसे घटित होता है, द्रव्य निक्षेप ने ये द्रव्य पुरानी उसकी भूतकालीन या भविष्यकालीन जो पर्याय है उसको वर्तमानवत स्वीकार करता है, क्योंकि द्रव्य वही का वही है। इसलिए यहाँ पूछा गया द्रव्य निक्षेप उसको कैसे स्वीकार है। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ऋजुसूत्र नय में वर्तमान समयवर्ती पर्याय से अनंत गुणान्वित एक द्रव्य ही तो विषय रूप से संभव है। विशेषार्थ इसी का बता रहे, पर्याय द्रव्य को छोड़कर स्वतंत्र नहीं रहती और ऋजुसूत्र का विषय वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य है, इसलिए ऋजुसूत्र नय में द्रव्य निक्षेप भी संभव है। यानी वो वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य लिया, उसको भूतभावी को मत लो, पर वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को विषय किया, इसलिए उसको द्रव्य निक्षेप भी उसमें आ जाता है। इसी प्रकार ऋजुसूत्र नय में नाम निक्षेप का भी अभाव नहीं है, क्योंकि जिस समय शब्द का ग्रहण होता है उसी समय उसकी निजवाचकता पाई जाती है। यानी हमने किसी चीज का कोई नाम रखा है तो वो अपने उसको बताने वाला है, वो शब्द जो है नाम जिसको हमने लिया वो उस वस्तु को बताने वाला है, तो वस्तु की वर्तमान पर्याय से युक्त तो वो द्रव्य उसमें आ जाता है। यानी हमने ये बात देखी, नयों में से नयगम संग्रह और व्यवहार में सभी निक्षेप उसमें होते हैं, ऋजुसूत्र नय स्थापना निक्षेप को छोड़कर सभी शेष निक्षेप संभव है। अब कौन से रह गए, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। नय में भी नाम और भाव ये दो निक्षेप होते हैं, क्योंकि ये दो ही निक्षेप वहां पर संभव है, अन्य नहीं। यानी वहां पर भी वो स्थापना है, वो अन्य अन्य कुछ स्वीकार नहीं है उसको, केवल नाम निक्षेप और भाव निक्षेप ये दो ही निक्षेप वहां संभव है। उसी का विशेषार्थ, शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत ये तीनों ही नए शब्द प्रधान है, क्योंकि शब्दों की विशेषताओं से इसमें भेद पड़ते हैं, उसके लिंग है, उसके जो कुछ वचन है या उसमें जो कुछ अर्थ की निरुक्ति अर्थ होते हैं उसके अनुसार उसमें भेद पड़ते हैं। तो कहते ये शब्द प्रधान है और शब्द किसी न किसी संज्ञा के वाचक होते ही है, अतः उक्त तीनों नयों में नाम निक्षेप बन जाता है, क्योंकि किसी पदार्थ को बताने वाले शब्द तो होते ही है और ये शब्द ही इसका जो विषय है। तथा उक्त तीनों नयवाचक शब्दों के उच्चारण करते ही वर्तमान कालीन पर्याय को भी विषय करते हैं, अतएव उनमें भाव निक्षेप भी बन जाता है, भी लगाया, नाम निक्षेप भी आ गया और भाव निक्षेप भी आ गया। अब यहाँ शंका पूछ रहे हैं, यहाँ पर नय का निरूपण किस लिए किया गया, कौन से नयों में कौन से निक्षेप लगते हैं, ये बात यहाँ बताई। तो इसलिए नयों का नाम क्यों लिया यहाँ पर, उसका समाधान 10 नंबर ऊपर पढ़ेंगे। प्रमाण निक्षेपैर्योर्थं न विसमीक्षते युक्तं च युक्तवत् भाति तस्यायुक्तं च युक्तवत्। उसका अर्थ ऐसा है, जो पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, ये प्रमाण के कौन कौन से भेद है याद है, प्रत्यक्षादि, तो प्रत्यक्ष प्रमाण होते और परोक्ष प्रमाण होते। प्रत्यक्ष प्रमाण में तो सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होते हैं और पारमार्थिक प्रत्यक्ष होते हैं। सामवेदिकरण में इंद्रियों के हमने प्रत्यक्ष देखा उसको भी व्यवहार में प्रत्यक्ष कहने में आता है। और परोक्ष प्रमाण में क्या क्या आता है? स्मृति है, प्रत्यभिज्ञान है, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब परोक्ष प्रमाण के भेद है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा इन्हें प्रमाण के भेद सभी आ गए इसके अंदर। जो पदार्थ का प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा, नैगमादि नयों के द्वारा और नामादि निक्षेपों के द्वारा सूक्ष्म दृष्टि से विचार नहीं करता, यानी इनका सूक्ष्म दृष्टि से विचार आवश्यक है। क्यों? पदार्थों का सही निर्णय करने के लिए। इसको भी कहते हैं युक्ति और आगम से। उसका अर्थ क्या है? यही तो है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी विषय है, तो उसको हमें इन्हीं तरह से उस पर निक्षेप लगाओ, उसके प्रमाण लगा लो, उसमें नए निक्षेप सब लगाना चाहिए। पारमार्थिक प्रत्यक्ष, हाँ। तो जो ऐसा विचार नहीं करता उसे पदार्थ का समीक्षण कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त सा प्रतीत होता है। युक्त यानी संगत, पदार्थों का उसने जो समीक्षण किया, परीक्षा की, वो संगत होने पर भी असंगत लगता है, विसंगत लगता है। और कभी अयुक्त होते भी युक्त की तरह प्रतीत होता है, यानी वो सही नहीं भी फिर भी उसको सही लगता है। यानी पदार्थों का सही निर्णय करने के लिए उसको प्रमाण नए निक्षेपों के द्वारा अच्छी तरह उसको जानना चाहिए। क्योंकि तत्वार सूत्र में भी आता है ना, ये तो अधिगम, पदार्थों का अधिगम प्रमाण निक्षेप ही ऐसा उसमें सूत्र आता है। हाँ, प्रमाण नहीं यही अधिगम होता है। इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा, नैगमादि नयों के द्वारा और नामादि निक्षेपों के द्वारा पदार्थों का सूक्ष्म विचार होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ निकालो उसमें यही बात करेंगे। देखो यहाँ नीचे एक नंबर लिखा है, जो न प्रमाण नये ही निक्षेवेण निरीक्षदे अर्थम तस्य अजुत्तम जुत्तम जुत्तम अजुत्तम व परिहायी। जो अभी हमने अर्थ देखा ना, उस समान लगता है वैसा वैसा ही यहाँ जो बताया। अब दूसरा भी उन्होंने उद्धरण दिया है, विभय ने विशेषावश्यक भाष्य में से लिया है, अर्थम जो न समीक्षई निक्षेव नयप्पमाणो विहीना तस्य अजुत्तम जुत्तम जुत्तम अजुत्तम व परिहायी। वही बात वहां बताए कि जो अर्थ को इन पदार्थ को निक्षेप नय और प्रमाण से अच्छी समीक्षा नहीं करता है उसकी बात है। अब 11 नंबर को पढ़ना है हमको, फिर पेज उल्टेंगे। हाँ,
11 नंबर का श्लोक,
11 नंबर का श्लोक 17 नंबर के पेज पर है। ज्ञानम प्रमाण मिथ्या उरुपायो न्यास उच्यते नयो ज्ञातुर अभिप्रायो युक्तितोर्थ परिग्रह। ये लघी श्रेय में लिखा है नीचे, ज्ञानम प्रमाणम आत्मा देव उपायो न्यास उच्चते नयो ज्ञातुर अभिप्रायो युक्तितोर तब परिग्रह। वही बात वहाँ उन्होंने वहाँ से निकाली है। इसका अर्थ हम 18 नंबर के पृष्ठ पर देखेंगे, फिर विशेष चर्चा कल करेंगे। देखो, विद्वान लोग सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाण, ये प्रमाण की परिभाषा है। नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। किसके भेद किसमें किए? वस्तु में निक्षेप, वस्तु में डाले जाते, वस्तु में। तो नामादिक के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। यानी तीनों की परिभाषा है। प्रमाण किसको कहना? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और वस्तु में भेद करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। इस प्रकार युक्ति से, ये हमेशा आता है युक्ति से और परंपरा गुरुओं के उपदेश से, ये जब युक्ति में क्या लेना, तो युक्ति से अर्थात प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा पदार्थ का ग्रहण अथवा निर्णय करना चाहिए। युक्ति से ने कोई ट्रिक लगा कर ऐसी बात उसकी अर्थ उसका नहीं होता। युक्ति का ही अर्थ होता है प्रमाण, नय और निक्षेप से पदार्थ का ग्रहण यानी जानना, निर्णय करना चाहिए। इसलिए कहते अतएव नय का निरूपण करना आवश्यक है, क्योंकि ये नय की निक्षेप के बीच में नय की बात कहाँ से निकाली ये प्रश्न था। तो इसलिए प्रमाण से भी, नय से भी और निक्षेप से भी वस्तु को अच्छी तरह से जानना चाहिए, ये बात यहाँ हो रही थी। अब हम यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
Remember?